તારીખ 15/7/1993 શ્રી સમયસાર ગાથા 203 અને 204 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 68
સત સ્વભાવ, સત સ્વભાવ મેં અપના સ્વભાવ, આત્મ સ્વભાવ રૂપ મેં અનુભવ મેં આતે હૈ, આતા હૈ, નિયત અવસ્થા વાલા હૈ, એક હૈ, નિત્ય હૈ ઓર અવ્યભિચારી ભાવ, ચૈતન્ય માત્ર જ્ઞાન ભાવ હૈ, તો એક હી સ્વયં પોતે સ્થાયી હોને છે, ખાતા કા સ્થાન તથા રહેને વાલે કા રહેઠાણ હોને યોગ્ય હોને છે, પદભૂત હૈ, સ્વયં કા પદ હૈ, સ્વયં કા સ્વરૂપ હૈ, ક્યો કે વો સત સ્વભાવ મેં હૈ, આત્મ સ્વભાવ રૂપ હૈ, આત્મ સ્વભાવ રૂપ અનુભવ મેં આને વાલા હૈ, નિત્ય અવસ્થા વાલા હૈ, જૈસા હૈ વૈસા નિત્ય હૈ, વો ઇસકી અવસ્થા હૈ, કારણ કે પર્યાય ક્યો કહા, પ્રત્યેક વર્તમાન મેં પૂર્ણ અવસ્થિત હૈ, અવસ્થા વાલા હૈ મતલબ અવસ્થિત હૈ, અવસ્થા સે અવસ્થિત હૈ, મારા પૂર્વગ્રહ એસા હૈ કે ઉત્પાદ જે હોવે ઉસી કો હી અવસ્થા કહેતે હૈ, એસી બાત નહીં લેના હંમેશા, જહાં ભી આત્મા આત્મ સ્વરૂપ સ્થાયી રૂપ સે ટિકા હુઆ હૈ, જિસ સ્વભાવ મેં આત્મા અવસ્થિત હૈ, તો ઇસકી અવસ્થા હૈ, ઇસલિયે વર્તમાન મેં પરિપૂર્ણ અવસ્થિત હું, તો યહી વર્તમાન મેરી શુદ્ધ પર્યાય હૈ, જિસકા જિસ વર્તમાન કે અવલંબન સે હી ઉત્પાદ રૂપ અવસ્થા મેં સિદ્ધિ પેદા હોતી હૈ, ઇસલિયે ઉસકો કારણ શુદ્ધ પર્યાય કહેને મેં આઈ, પર્યાય કહે કરકે આચાર્ય મહારાજ ની બહુ કૃપા થઈ, ક્યોકે ઇસ જીવ જો હૈ વો પર્યાય કી બહુ ચિંતા કરતે હૈ, દેવ સુનમાય અવલોકન કરેંગે તો એસે પર્યાય ક્યો નહીં આઈ, અચ્છા ચિંતા કરતે હૈ, એસી પર્યાય ક્યો હુઈ ઓર એસી ક્યો નહીં હુઈ, નહીં એસી ચિંતા કરને લાયક નહીં હૈ, પર્યાય કી ચિંતા દુશ્ચિંતા હૈ, દુષ્ચિંતા હૈ, મેં વર્તમાન મેં હી પરિપૂર્ણ શુદ્ધ હું, શુદ્ધ રૂપ અવસ્થિત હી હું, એસા અવલંબન લેના બસ, એ અવલંબન લેને વાળી પર્યાય મને છે, ઉસકી ચિંતા કરને કે ફિર કોઈ આવશ્યકતા નહીં હૈ, પર્યાય કહેકર કે પર્યાય કી ચિંતા કો છુડા લી, પર્યાય કી ચિંતા છોડ દી, એસે યહાં એસા એસા શબ્દ પ્રયોગ કિયા હૈ, નિયત અવસ્થા વાળા, ઉત્પાદય રૂપ અવસ્થા વાળા નહીં, કિંતુ નિયત અવસ્થા વાળા, એક રૂપ હૈ, અભેદ હૈ, અદ્વૈત હૈ, નિત્ય મેને શાશ્વત હૈ, પર અવ્યભિચારી મેને જિસમે કોઈ મિલાવટ નહીં હૈ, એડલ્ટરેશન નહીં હૈ, એક ચૈતન્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર ભાવ હૈ, એસા જો ભાવ જ્ઞાન ભાવ હૈ, વેદ હી સ્વયં સ્થાયી હોને છે, તો સ્થાતા મેને સ્થિર રહેને વાલે કા સ્થાન હૈ, સ્થાન રહેને વાલે કા રહેના કે જગહ હૈ, રહેને કા સ્થાન હૈ,
અવસ્થા ભી હૈ ઓર સ્થાયી ભી
હૈ,
અવસ્થા કહેકર ભી સ્થાયી કે
સ્થાયી અવસ્થા હૈ, તો ઉત્પાદ્યકારી અવસ્થા નહીં હૈ, સ્થાયી અવસ્થા હૈ, શાશ્વત અવસ્થા હૈ, અવસ્થા સ્થા મેને રહેના, અગર અવ મેને અચ્છી તરહ અપને સ્વરૂપ મેં અપના આત્મા અચ્છી તરહ અનાદિ અનંત રહા હુઆ હૈ, ઉસી કો અવસ્થિત કહેને મેં આતા હૈ, ઇસલિયે સમસ્ત અસ્થાયી ભાવો કો છોડકર પર્યાય માત્ર ઉત્પાદને વાલે સમસ્ત અસ્થાયી ભાવો કો છોડકર જો સ્થાયી ભાવ રૂપ હૈ ऐसा परमार्थ रस पढ़ने से स्वाद में आने वाला यह ज्ञान एक ही आस्वादन योग्य है। यहाँ से विशेष रूप करते हैं, आगे जो चार पांच से जाते में विषय लेना है वो तो यहाँ से शुरू किया है, क्योंकि मूल गाथा में ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं है। आत्मने द्रव्य स्वभावान प्रदान स्वागतान तथा नियतम शीघ्रम एकम भाव उपलब्ध मानव स्वभाव न बच। लेकिन अमृत चंद्र आचार्य जी ने ऐसा लिखा कि ततः सर्वान एव स्थायी भावान मुक्त्वा स्थायी भाव भूतम परमार्थ रस तया स्वादमान ज्ञानम एकम एवं इदम स्वाद्यम ऐसा लिया है। यहां से ज्ञान शुरू किया है
और के वेदन को लिया तो
हाँ आस्वादन करने योग्य ज्ञान ही है। ज्ञान ही अनुभव में आता है और ज्ञान का ही वेदन होता है और यही वेदन करने योग्य है। हमारे आदित द्रवगुण पर्याय से को लागू करने की बहुत जरूरी है। तो ज्ञान द्रव्य लेना गुण लेना या पर्याय लेना ऐसा प्रश्न उठाएंगे हम, ये बात यहां नहीं लेना। ज्ञान मैंने आत्मा, आत्मा मैंने ज्ञान, बस जिसमें द्रव का गुण का पर्याय का कोई भेद लेना ज्ञान मात्र ऐसा आत्मा। सारे समय साल में आत्मा को ऐसा ही कहा है कि आत्मा ज्ञान मात्र है। ज्ञान मात्र का स्पष्टीकरण दिया मैं आत्म जागृति मान लिया। इसलिए समस्त अस्थाई भावों को छोड़कर यानी उत्पाद लेने का लक्ष्य छोड़कर जो स्थायी भाव रूप है ऐसा परमार्थ रसपण स्वाद में स्वभाव रस रूप स्वाद में आता है, परम रस रूप स्वाद में आता है, अमृत रस रूप स्वाद में आता है, शांत रस रूप स्वाद में आता है, ऐसा एक ज्ञान ही है। वही आस्वादन करने योग्य मैंने अनुभवन करने योग्य है, दूसरी कोई चीज अनुभव करने लायक नहीं। महावाद कहते हैं कि ज्ञान का स्वाद शांत होता है, ज्ञान का स्वाद ज्ञान रूप स्वाद शांत होता है, परंतु उसकी विशेषता है शांतता है, उसकी एक विशेषता है। फिर भी स्वाद का विषय उद्गल के स्वाद का उससे भी बचन गोचर बहुत कम है, तो ये एरोपी पदार्थ के स्वाद का विषय कैसे बचन गोचर करें। ऐसे काली मिर्च और लाल मिर्च कहीं के कैसी लगती है, तीखा लगता है, क्या अंतर है वो तो स्वाद को मालूम स्वाद लिए बिना मालूम नहीं पड़ेगा। तो स्वाद का विषय मैंने अनुभव का विषय, अनुभव का विषय अनुभव से मालूम पड़ता है। इसलिए हमें बिना अनुभव इसका ज्ञान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या जो अनुभव की चीज अनुभव से ही मालूम पड़ती है और हम ऐसा प्रयास करते रहे पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते विचार करते करते कि कैसा स्वाद होगा कैसा स्वाद होगा, तो ये हमारा प्रयास है वो तो ठीक नहीं है, योग्य नहीं है, अयोग्य है, ऐसी बात है। इसलिए अनुभव जो वेदन की चीज है वो वेदन से ही वेदन गोचर करे। द्रव दृष्टि प्रकाश के पहले भाग के पत्र विभाग में एक गुरुदेव के वचन का उद्धरण किया है सुगानी जी ने कि गुरुदेव ऐसा कहते हैं, ऐसा करके लिखा है, मानो नाम तत्वज मने गम्य है। क्या लिखा है? गुरुदेव ऐसे कहते हैं, गुरु तो मेरा भी प्रवचन करते हैं, मानो नाम तत्वज मने गम्य, गम्य मैंने अनुभव गम्य है, मैंने निरंतर मुझे मेरा ज्ञान तत्व ही अनुभव गोचर नहीं रहा है, क्योंकि ज्ञान में दूसरे का अनुभव होने का अवकाश नहीं, गुंजाइश नहीं। कहीं भी रहना हो, गमे क्या रहना हो, खाली हूं मारा नाम व्यापी में चलो, कहीं भी हूं मैं, कोई भी क्षेत्र हो, इधर का उधर का, मेरा क्षेत्र नहीं, मेरी व्यापकता कहाँ है? मेरे ज्ञान में ही मेरी व्यापकता। बस सुगानी जी ने कोई मुद्दे की बात पकड़ी थी तो वो पकड़ी थी कि गुरुदेव के उपदेश में से मैंने ये ले लिया, मुझे तो मेरा ज्ञान तत्व ही गम्य होता है, और कहीं भी वो हूं मैं, मेरे ज्ञान में मैं व्याप करके नहीं रहा हूं, और जगह में रहा ही नहीं, मेरा स्थान ही नहीं, तो स्नातक का स्थान चल रहा है, मेरा स्थान और जगह है नहीं। ये सारे उपदेश का सार है, समय सार का सार कहो, गुरुदेव के उपदेश का सार कहो, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश का सार कहो, भावा पूर्व में वर्णाधिक गुणस्थान परिंद्र भाव कहे थे, वे सब आत्मा में अनेक क्षणिक व्यभिचारी भाव हुए थे, व्यभिचारी भाव है, जो गुणस्थान आदि 14 गुणस्थान है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मस्वरूप इससे पार है, 14 गुणस्थान से आत्मस्वरूप है वो पार है, सभी गुणस्थान शादि शांत है और आत्मा अनादि अनंत है, इसलिए वे अनवनियत है, अनेक है, क्षणिक है और विलास है, आत्मा स्थायी है, सदा विद्यमान है और वे सब भाव अस्थायी है, नित्य टिकते नहीं, इसलिए वे आत्मा के स्थान मैंने रहने के स्थान हो सकते नहीं, अर्थात वे आत्मा के पद नहीं है, आत्मपद नहीं है, जैसे देह आत्मपद नहीं है फिर भी भ्रांति से देह पद में आत्मपद की भ्रांति से अनुभव होता है कि मैं ऐसा हूं, ऐसे जितने भी विभाव भाव हैं, जितने भी क्षणिक भाव हैं, वो आत्मा का पद नहीं है। जो यह स्वसंवेदन रूप ज्ञान है वह नियत है, स्वसंवेदन रूप ज्ञान है, वेदन से ही बात करते हैं, अध्यात्म का अधिकार है तो वेदन से बात करेंगे, अनुभव से बात करेगी, यह जो स्वसंवेदन रूप ज्ञान है, सामने रूप ज्ञान नहीं बताया है, स्वसंवेदन रूप ज्ञान है वो नियत है, एक है, नित्य है और अव्यभिचारी है, उसमें कोई दूसरे के आने का गुंजाइश नहीं है, आत्मा स्थायी है और यह ज्ञान भी स्थायी भाव है, आत्मा स्थायी है और ज्ञान भी स्थायी भाव है, इसलिए वह आत्मा का पद है और एक ही ज्ञानियों द्वारा आस्वादन लेने योग्य है। कि ज्ञान से क्यों लिया इतना, ऐसे तो बहुत से गुण है, इसलिए ज्ञान से लिया कि पहचान भी ज्ञान से होती है और अनुभव भी ज्ञान में ही होता है, इसलिए ज्ञान की प्रधानता से ये बात कहने में आती है, क्योंकि शास्त्र तो अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए कहा है, तो अज्ञानी ज्ञानी कैसे बने, कि उसको ज्ञान से ही आत्मस्वरूप का ग्रहण होगा, दूसरी कोई परिस्थिति आत्मस्वरूप के ग्रहण करने के लिए नहीं है। यह बात अमृतचंद्राचार्य ने अपने अनुभव से कही। ज्ञान शब्द को प्रयोजन किया है इधर पीछे टीका है, गाथा में नहीं लिया है, टीका में शुरू कर दिया। टीका में क्यों कहा कि आगे की गाथा में सूत्रकर्ता आचार्य भी कहने वाले हैं, तो दो सौ चार गाथा ज्ञान की आई, बतीसूत्री मना पड़े, सब ज्ञान की बात आई ना। तो ये आगे की गाथा का अनुसंधान यहां से चालू कर दिया, आखिरी पंक्ति में विषय का अनुसंधान कर दिया। तो ज्ञान से आत्म प्राप्ति है ऐसा दर्शाने का यहां प्रयोजन है, कोई दूसरे पद्धति से स्वभाव और स्वरूप ग्रहण करना जाए जब चाहेगा या प्रयास करेगा सफलता तो बात करें थी। अस्तित्व अस्तित्व भी एक शक्ति है और ज्ञान भी एक शक्ति है, दोनों शक्ति अनंत है, लेकिन मुमुक्ष जीव को कहां से शुरू करना, मैं हूं यहां से चालू करना या मैं नायक हूं यहां से चालू करना, कि मैं विनायक हूं यहां से ऐसी बात है। ये अनुभवी श्री गुरु ने अपने अनुभव से इस बात को खोली है और हमको, हम अनुभवी नहीं होने से हमको उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, स्वच्छंद से कोई दूसरा मार्ग ढूंढने की कोशिश मत करना, समय और शक्ति दोनों बर्बाद हो जाएगी, कोई सफलता। इसलिए यहां से चालू करेंगे, हाँ, क्योंकि एक होए संक्रामक परमात्मा आत्म कल्याण का उपाय तो एक ही प्रकार से है, और जिसने आत्म कल्याण किया वो जब बताते हैं तो फिर हमको दूसरा रास्ता से काम करने का विचार क्यों आना, क्यों आना चाहिए, क्यों हमारी आज्ञाकारिता नहीं है, अज्ञानकित रहना नहीं चाहते हम क्या, विश्वास है। व्यवहार में भी बड़ों की आज्ञा छोटों छोटा पास पालन कर सके नहीं पालन कर सकते, तो यहां श्री गुरु महान है, इनकी आज्ञा में रहना है, तो श्री गुरु की आज्ञा में रहने को ही प्रथम संकेत बोला है आत्मसिद्धि की 17 नंबर की गाथा, स्वच्छंद मत आग्रहत जी वरते सदगुरु लक्ष्य, संकित तेने भाकियों कारण गणी प्रत्यक्ष, कारण प्रत्यक्ष कारण लिया है, परोक्ष कारण नहीं लिया है। श्री गुरु देखते हैं कि अगर जो मुमुक्षु सदगुरु अपना स्वच्छंद छोड़ करके, अपना मत छोड़ करके, अपना अभिप्राय छोड़ करके, अपना आग्रह पूर्वग्रह छोड़ करके, सदगुरु कहते हैं उसी में ध्यान लक्ष्य दे करके उसी के अनुसार जो प्रवर्तन करता है, ऐसे मुमुक्षु में हम सम्यक दर्शन का कारण देखते हैं उतना ही नहीं, वो तो सम्यक दर्शन का कारण हम प्रत्यक्ष तौर से देखते हैं। श्री गुरु को तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, तो प्रत्यक्ष ज्ञान में वो देखा कभी ये सम्यक दर्शन पाने वाला है, ऐसी बात। इसलिए हमारे दूसरे रास्ता निकालने का जो विचार हो, तर्क हो, वितर्क हो, कुछ भी हो, शांत कर देना, गुरु के रास्ते से चलना है, गुरु की आज्ञा आज्ञा से ही चलना है, दूसरी बात हम अनजान है रास्ते से, रास्ते से हम अनजान है, हम क्यों दूसरा रास्ता है, रास्ते पे चले। जब एक जाना पहचाना अनुभव किया हुआ रास्ता है उसको छोड़कर वो दूसरा क्यों करे। इसलिए यही रास्ता लिया है कि एक ही ज्ञान है, प्रसंवेद रूप ज्ञान है, यही अनुभव करने योग्य है, यही आस्वादन करने योग्य है, दूसरा कुछ आस्वादन करने योग्य नहीं है। तो फिर इसके सामने ये प्रश्न उठता है कि ज्ञान के तो अनेक भेद है, आपने तो एक स्वसंवेदन ही आस्वादन करने योग्य है ऐसा कहा। ज्ञान के तो भेद हम जानते हैं क्योंकि हम शास्त्र पढ़े हैं, जो शास्त्र नहीं पढ़े उनको तो ज्ञान के भेद मालूम नहीं है। अब शिष्य कैसा लिया कि जिसने शास्त्र पढ़ा है ऐसा लिया है। आपने कहा कि स्वसंवेदन ही आप अनुभव करने योग्य है, तो उसमें कौन सा ज्ञान का अनुभव करें, मत ज्ञान का अनुभव करें, सुख ज्ञान का अनुभव करें, मनोपय ज्ञान का अनुभव करें, सुख ज्ञान का अनुभव करें, क्या करें? क्योंकि वो सब प्रकार के ज्ञान ही हमें मालूम है, लेकिन वो पांचों प्रकार के ज्ञान एक में समाविष्ट है, स्वसंवेदन में सब आ जाते हैं। देखो ये 204 का रीडिंग है। अब कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी उसका स्वरूप विचार करने में आवे तो ज्ञान एक ही है। स्वरूप सामान्य रूप से एक है, विशेष रूप तो कर्म के निमित्त से भेद हुए हैं, लेकिन इनका सामान्य स्वरूप क्या है? ज्ञान सामान्य हुई, इसका सामान्य स्वरूप है और यही स्वसंवेदन रूप है कि विशेष ज्ञान के भेद प्रभेद में हमें जाना नहीं है। हाँ सामान्य ज्ञान वो तो गाथा है, इसकी तो गाथा है दोस्तों का। वेद उठा करके कहेंगे एक कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से ऐसे भेद हुए हैं, भेद नहीं हुए हैं ऐसा तो कहेंगे नहीं, भेद तो हुए हैं, किंतु मैंने उसको कौन कर दिया। किंतु परंतु की बात कब आती है कि जो बात स्थापित की है उसको कौन कर सामान्य ज्ञान में जो कॉमन फैक्टर है, जैसे गणित का दृष्टांत दे रहे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 27, 30 इसमें कॉमन कौन है? 3 है वो कॉमन है, सब में 3 सामान्य है। जैसे मति ज्ञान हो, सुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मनोपर्य ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, सामान्य कौन है? नर 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 रूप रहता है वो ज्ञान सामान्य है, वही ज्ञान है, ये सामान्य ज्ञान है। और यहाँ वेदन चलता है, जानना तो है लेकिन वेदन रूप जानना है, दूसरे पदार्थ में उपयोग जाता है वहां जानना बनता है, उसको वेदन कर सकते हैं, ये फर्क है। वो बात लिया है 50 गाथा में निकाल साधारण वो साधारण परिग्रह की गाथा जो है आत्मस्वरूप कैसा है, परमात्मस्वरूप जीव कैसा है, उसका लक्षण कैसा है, सकल विषयों के विशेषों में साधारण साधारण सामान्य कैसा, विषय अनेक है, ज्ञान के विषय अनेक हो सकते हैं पर पदार्थ में, लेकिन इस विशेषों में ज्ञान के विशेष कितने भी हो अंदर निराकार ज्ञान के, साधारण एक ऐसा एक ही कैसा है वो, स्वसंवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव ऐसा होने है या सामान्य है वो स्वसंवेदन उसका स्वभाव है। सामान्य कैसा होता है? स्वसंवेदन रूप होता है। यही स्वभाव होने है वो केवल रस वेदना परिणाम को ग्रहण करता नहीं और रस को चखता नहीं है। अपने ज्ञान वेदन का आस्वादन होता है ना रस का आस्वादन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान वेदन में रस का आस्वादन वेदन आ सकता। रस मीठा है या कड़वा है या खट्टा है वो जान सकते हैं, वेदन कर सकते हैं क्योंकि इसका स्वभाव नहीं है। वेदन परिणाम स्वभाव में भी दूसरे का वेदन करने का स्वभाव नहीं है। भिन्न भिन्न स्वाद को जाने लेकिन भोग सकते नहीं, वेदन कर सकते नहीं है।
जानना और वेदन में क्या
अंतर? बहुत अंतर है। जानना और वेदन में, जानने में जानने का कार्य होता है, वेदन करने में भोगने का कार्य होता है, अनुभव का कार्य होता है। जैसे हम मीठे स्वाद को जान सकते हैं लेकिन मीठे स्वाद को वेदन नहीं कर सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं ऐसा लगता है तो ये भ्रांति है। भ्रांति है वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता नहीं है इसलिए तृप्ति नहीं होती है, यही तो कारण है अतृप्त रहने का। कोई भी आत्मा तृप्त नहीं होता है क्यों किसी विषय से? क्योंकि कोई विषय को भोग तो सकता ही नहीं, अपना वेदन ही उसको हो सकता है, ये इसकी मर्यादा है। ये वस्तु के स्वरूप की मर्यादा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। जब ज्ञानी नहीं करते, सिद्ध परमात्मा नहीं करते तो क्या अज्ञानी कर सकते? क्या उनकी कोई ज्यादा शक्ति है? क्या है ही वो भ्रांति है। जैसे इसका स्वरूप विचारने में आवे तो क्या इसका स्वरूप देखिए, देवीला जी के बात है, कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी ये क्षयोक्षम ज्ञान इसका स्वरूप विचार सुनने में आ रहे तो वो स्वरूप नहीं है। इसका मति ज्ञान ज्ञान का स्वरूप नहीं है। मति ज्ञान तो ज्ञान का स्वरूप नहीं है किंतु केवल ज्ञान भी ज्ञान का स्वरूप नहीं है ऐसा कहेंगे। ये तो क्षय ज्ञान है। मति रूप अवधि मनो पर्यंत सूक्ष्म ज्ञान है। ज्ञान की जो व्यवस्था होती है एक क्षायिक और एक क्षायोक्षमिक, तो बारवा स्थान तक क्षायोक्षमिक ज्ञान है। उसमें चार भेद होते हैं, चारों भेद हो सकते हैं, किसी को बंधन आने को चार भेद होते हैं। लेकिन क्षायिक ज्ञान केवल ज्ञान है, वो भी ज्ञान का स्वरूप नहीं है, ये गाथा चल रही है। तो लोग तो सूक्ष्म ज्ञान को लक्षण और स्वरूप लेते हैं, यहां पर कैसे क्षायिक ज्ञान भी इसका स्वरूप नहीं है। इसका स्वरूप विचारना में विचारना विचारना में लेवे तो विचार में लेवे तो ज्ञान एक ही है और भव ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। ऐसा ज्ञान सामान्य वही मोक्ष का उपाय है। मत ज्ञान श्रुत ज्ञान वो मोक्ष का उपाय नहीं, केवल ज्ञान तो मोक्ष स्वरूप लिया जाता है लेकिन मोक्ष का उपाय भी तो अपने को तो उपाय की जरूरत है ना। हमारे पास उपाय कौन सा है? मत ज्ञान उपाय है, श्रुत ज्ञान उपाय है, अवधि मनो परे उपाय है कि नहीं? किसी को अवधि ज्ञान होता है फिर वो इधर बैठे बैठे बोले कि देवलोक में ऐसा हो रहा है, अभी देवलोक में गुरुदेव इधर विराजमान है। अरे बहुत चमत्कार, बड़ी बात है। बड़ी बात वो नहीं है, सपना स्वसंवेदन रूप ज्ञान है वो बड़ी बात है। ऐसी बात है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाह्य दृष्टिवान जीव को बाह्य ज्ञान की महिमा आती है। क्या चार बाह्य दृष्टि जीवों को भूलने का चार स्थान है? एक तो बाह्य त्याग, एक बाह्य शांति। कोई मंद कषाय वाला जीव होता है, बहुत शांत रहता है, बहुत शांत है, ये मनुष्य बहुत शांत है, कितनी शांति है उसको। एक तो बाह्य त्याग में लोग भूलते हैं धर्म के क्षेत्र में, एक बाह्य शांति में, बाह्य उदासीनता हो, वैराग्य हो, शांति हो, एक बाह्य भाषा, भाषा में शैली बोलने की अच्छी हो, और एक जिसको कहते हैं वक्तृत्व कला, और एक बाह्य ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, शास्त्र का बहुत, शास्त्रों का बहुत ज्ञान हो। ये चारों ज्ञानों में आकर्षित होने वाले जीव चारों पद में बाह्य दृष्टि होते हैं। अंतर्दृष्टि वाले को ये देखने की चीज होती नहीं, वो तो इसका अनुभव को देखेगा, वेदन को देखेगा, क्योंकि यही ज्ञान का स्वरूप है। सामान्य ज्ञान वही ज्ञान का स्वरूप है, और यही साधन है, यही मोक्ष का उपाय है, यही मार्ग है, यही इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। स्व संवेदन करते करते मुक्ति में जाएंगे, शास्त्र पढ़ते पढ़ते मुक्ति में नहीं जाएंगे, स्व संवेदन करते करते मुक्ति में चले जाएंगे। श्रीभूति मुनि को क्या हुआ? नवतत्व का नाम तो आता नहीं था, लेकिन केवल ज्ञान मुक्ति में चले गए, निर्वाण पद में विराज गए। क्यों? स्व संवेदन जो हुआ था वो बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो गया, या मुक्ति में चले गए। चारों है सूक्ष्म भाव में ज्ञान, ज्ञान की पर्याय चारों सूक्ष्म भाव में, मति भी सूक्ष्म, क्रोध भी सूक्ष्म, बुद्धि वाला भी सूक्ष्म है, और मनोप्रय वाला भी सूक्ष्म भाव है। भूलने के जो चार ठिकाने हैं उसमें एक तो खुदगल का है, जो वाणी है वो तो आत्मा की पर्यायी नहीं है। क्या जैसे रजनीश के चक्कर में लोग क्यों आए? देवचंद भाई रजनीश के चक्कर में क्यों आए? कि वो वाणी के कारण है, ज्ञान नहीं था उसके पास, सूक्ष्म था, लेकिन सूक्ष्म भी वो फॉरेनर को पहचानते नहीं, तो बहुत बुद्ध लोग होते हैं तो कुछ नहीं समझते, तो उसके जो भाषा थे ऑरेटरी थी उसके चक्कर में लोग आ गए, और कोई सूक्ष्म ज्ञान के चक्कर में आते हैं तो वो ज्ञान के ऊपर आए। और जो शांति है, वायु उदासीनता, उसमें चारित्र की प्रधानता है, वायु त्याग में भी आश्रम की प्रधानता है, उसमें दो आश्रम है, एक ज्ञान का है और एक वाणी का है, उसमें तो आत्मा का एक ही गुण काम करता नहीं है, वो तो अनात्म पदार्थ है।
प्रयोजन भरत होने से फंस जाते हैं, प्रयोजन भरत होने से फंस जाते हैं।
हाँ, प्रयोजन गलत होने से,
प्रयोजन तो दुख का ही होता है, हम कहीं भी किसी से भी वाणी से आकर
भी प्रयोजन सुख का ऐसा है, प्रयोजन सुख का होगा तो आप फंसाओ देने छोड़ जाओगे, वाकई ही जो प्रयोजन सुख का होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाणी विलास है वो सुख का कारण नहीं है। तो आपको थोड़ा भी प्राइमा से आकर्षण वह होगा, लेकिन आप मां टिकेंगे नहीं, आप सुख जाएंगे वहां से। अगर आपका प्रयोजन ठीक नहीं है तो फिर चौंक जाएंगे।
दिगंबरता
बड़े नास्तिक थे, पुरोहों को कभी नहीं मानते थे, पुरोहों को नहीं मानते थे। हमारे भावनगर में आए थे तो चर्चा हुई थी, दूसरे मनुष्य के साथ हुई, पुरोहों है कि नहीं है, नहीं पुरोह ऐसा मानते थे।
प्रभाव है तो पढ़ते तो दिगंबर निवास हाँ तो बहुत पढ़ा था, बहुत पूरा दिन में शास्त्र पढ़े थे, बच्चे पढ़े थे, वैसे वो गुरु को नहीं मानते थे। आत्मा और परमात्मा के बीच में गुरु है, वो दलाल है, दलाल नहीं चाहिए उनको, ऐसा कहते थे। कहते थे कि नहीं, हमारे तो सीधा कनेक्शन लेना बंद करना है परमात्मा से, जिसमें गुरु नहीं चाहिए।
भीतर की बात करते ना, भीतर में जाओ, भीतर में जाओ, लेकिन भीतर का स्वरूप नहीं बताया।
कहाँ से बता रहे थे? स्वरूप बताते थे, भीतर में शून्य है
ऐसा, लेकिन वो
क्या कहते हैं, भीतर में कुछ नहीं है, भीतर में शून्य है, ऐसा कहते हैं। वेल शॉट, जैसे देखते वैसे बताते थे, सही बात है, ऐसी बात है, उनसे देखा ही नहीं था भीतर, उन्होंने क्या बताया, वही बात है। लोग तो भाषा के चक्कर में, भाषा के भवन में ऑरेटरी फाइन थे, क्लास वन ऑरेटरी, मैंने 20 मिनट सुना है, हम लोगों ने 20 मिनट सुना है पीछे, मैं पीछे से गया 20 मिनट तक चला हूँ, जब फिर भी चक्कर में आ गए, कितने भूले जी, प्रत्यक्ष तो सुने तो चक्कर में आ ही जा रहे, लेकिन बिना सुने चक्कर में आ गए, इतना भोपन का क्यों, परीक्षा करने के लिए आदमी बोलता है, कहां से बोलता है, कैसे बोलता है, ठीक बोलता है, नहीं बोलता है, बराबर तलाश करनी चाहिए, शैली कैसे भी हो, सूक्ष्म ज्ञान कैसा भी हो, व्याप कैसा भी हो, बाह्य शांति कैसी भी हो, ये सब बाह्य दृष्टि के स्थान है, अंतर्दृष्टि का स्थान कोई अलग है, तो उसकी पहचान होनी चाहिए, वरना कहीं ना कहीं चक्कर में फंस जाओगे, फंस जाओगे तो मनुष्य भव पूरा का पूरा तो बैठो, ये बात नहीं जाएगी। इसलिए ज्ञान का स्वरूप का विचार करने में आए तो ज्ञान एक ही है और वह ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है, ऐसा अर्थ की अब गाथा कहते हैं आचार्य महाराज, इस अर्थ की गाथा इस अभिप्राय से गाथा कहेंगे। अभी सूदो भी मन केवल कतम होदी एकम एवं परम सो ऐसो परमक्षो नविधुन निगुन निर्मिताभि मति ज्ञान, सत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनो प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, केवल ज्ञान को भी नहीं छोड़ा इधर, तो एक ही पद है, पांच पद देखते ही नहीं हम तो, वहां भेद विलीन हो गए, वेद दृष्टि खत्म हो गई, वेद का दृष्टिकोण छोड़ दिया है हमने, क्योंकि ज्ञान के सर्व भेदो वेद ज्ञान ही है, सेवा ज्ञान कुछ ज्ञान सामान्य एक ही देखते हैं, इसके विशेष भेद को हम देखते नहीं है, और यही परमार्थ है। यानी शुद्ध में के विषय भूत ज्ञान सामान्य ही यह परमार्थ है। देखो शुद्ध में के विषय भूत लिया है तो। इसमें एक तर्क लगाए हैं कि पर्याय ज्ञान के पर्याय तो पांच ही प्रकार के होते, पांच भेद के होते हैं, उसमें दो ही प्रकार है, एक सूक्ष्म चाप सूक्ष्म वाले और एक शायित वाले, और शुद्धने का विषय भूत जो परमार्थ ज्ञान है वो तो त्रिकाली आत्मा आप ले लो, लेकिन उसको यहाँ ज्ञान में क्यों लेते, इस पांच में उसको क्यों लेते हो? पांच में तो क्षायिक और क्षरश्रमिक दो ही भेद है, तीसरा भेद तो आगम में है ही नहीं, आप कहां से लाते हो? ये सवाल हमारे सामने आया, हम बहुत बेहतरीन इस पर बहुत बेहतरीन चार पांच दिन से। तो ये जो पांच भेद है वो आगम पद्धति से है। क्या आप जो भी पांच दो भेद लेते हैं क्षरोक्षमिक और क्षायिक के या मति से लेकर केवल के, वो आगम का विषय है, जिनागम का विषय है, किंतु अध्यात्म का विषय नहीं। क्या आगम का विषय से अध्यात्म का विषय कोई परे की चीज है? अध्यात्म का प्रकरण चलता हो उसमें आगम के बाद बीच में घुसा रोगे आपको इस विषय में ध्यान नहीं पहुंचेगा कि कहने वाले का कौन सा पारमार्थिक अभिप्राय इसमें रहा होगा। इसलिए आगम अध्यात्म अलग अलग समझने के हमारा ज्ञान में व्यवस्था होनी चाहिए। आगम का विषय कितना, अध्यात्म का विषय कितना है? चारों नियोग में अध्यात्म है और चारों नियोग में आगम स्वरूप है। चारों नियोग में आगम के चार भेद है, अध्यात्म के एक भी भेद नहीं है चारों में। देखिए क्या बात है, कर्णानुयोग में कर्णानुयोग के सिद्धांत का प्रतिपादन होगा, चरणानुयोग में चरणानुयोग के सिद्धांत का प्रतिपादन होगा, द्रव्यानुयोग में द्रव्यानुयोग का सिद्धांत का प्रतिपादन होगा, और चारों में अध्यात्म है वो सामान्य है, चारों में से अध्यात्म निकलता है और अध्यात्म सामान्य है, उसमें कोई भेद प्रभेद नहीं है। जो अध्यात्म चरणानुयोग में है वही अध्यात्म द्रव्यानुयोग में है, वही चरणानुयोग में है, वही कथानुयोग में सामान्य है। तो हमारा समझ का जो विषय है, दृष्टिकोण जो है वो साफ होना चाहिए, इतना साफ होना चाहिए कि आगम में अध्यात्म नहीं मिला है, अध्यात्म में आगम नहीं मिला है। ऐसे बहुत सी बातें हैं, जैसे कि हमारा आत्म प्रदेश है क्षेत्र, वो असंख्य प्रदेशात्मक वेद से और अवेद से एक प्रदेशात्मक अखंड प्रदेशात्मक एक आत्मा है। उसमें राग का प्रदेश और आत्मा का प्रदेश भिन्न भिन्न है, वो गाथा 181 बांके जाके के भावाद में जय चंद्र ने दिया है। और सुगानी जी और गुरुदेव वहां तक लेते हैं कि पर्याय का प्रदेश भिन्न और आत्मा का प्रदेश भिन्न। तो आगम पद्धति से जिसने अभ्यास किया है तो दूसरा अध्यात्म का दृष्टिकोण जिसके पास नहीं है वो ऐसा कहेगा कि आत्मा में क्या प्रदेश का बंटवारा हो जाता है? क्या आत्म प्रदेश में कोई बंटवारा होता है? जैसे एक साधक जीव है उसके चारित्र गुण की पर्याय मिले तो चारित्र गुण में उसको एक अंश में राग भी है और एक अंश में वितरागता भी है, दोनों है ना, आंशिक राग है आंशिक वितरागता है। अब चारित्र गुण तो पूरा प्रदेश में परिणमन करता है, एक गुण कहां परिणमता है? पूरे क्षेत्र में परिणमन करता है सभी गुण। तो जो राग का प्रदेश भिन्न और वितरागता का और आत्मा का प्रदेश भिन्न होंगे तो एक प्रदेश में दो भाग तो हो ही नहीं सकता। एक प्रदेश का दो भाग जिसका नहीं हो गए उसको तो प्रदेश कहते हैं, एक प्रदेश किसको कहें जिसका दो भाग नहीं हुए, और भाव तो दो है। और अध्यात्म ऐसा कहेगा कि राग का प्रदेश अलग है, आत्मा का संवर का प्रदेश अलग है। तो आगम वाले को वो बात नहीं बैठेगी, जो आगम को ही समझते हैं और अध्यात्म को नहीं समझते बन ही नहीं सकता है। आत्मा में प्रदेश एक अखंड भेद है, जहां राग है वहां वितरागता है, जहां द्रव्य है वहां पर्याय है, द्रव्य के प्रदेश और पर्याय के प्रदेश अलग हो ही सकते हैं या वो बात आगम पद्धति से सही है लेकिन अध्यात्म पद्धति से वो बात है ही नहीं। क्यों? कि राग चला जाता है, पर्याय चली जाती है, आत्मा चला जाता नहीं, तो चला जाता तो पूरा पूरा उसका प्रवेश उसके साथ जाना चाहिए, नहीं जाता। बाहर में तो समझ सकते हैं अपन, टेलीविजन में क्या होता है, आप लोगों को तो बिजनेस उसका स्क्रीन का जो क्षेत्र है वो का वो है, कितने पिक्चर आते हैं, हजारों पिक्चर आते हैं उस पर, तो पिक्चर का प्रदेश और स्क्रीन का प्रदेश क्षेत्र एक ही है कि अलग अलग है, एक भी है पर अलग भी है, सर्वथा अलग भी नहीं, जो सर्वथा अलग हो वहां आ नहीं सकता, पिक्चर में वहां नहीं आ सकता, पर एक हो सर्वथा तो वहां आग लगने से सारा टीवी जल जाएगा, पिक्चर में आग लगने से टीवी जल जाएगा, जो पिक्चर में आग लगी वो दूसरी चीज थी और जो स्क्रीन है वो दूसरी चीज है, तो वहां को हम सम्मत करते हैं कि दो अलग अलग है, एक क्षेत्र पर होने पर भी वहां तो हम मंजूर कर लेते, इधर हमारी पकड़ हो जाती है तो मंजूर नहीं करते, अगर पकड़ नहीं होती तो बात को समझ सकते हैं ऐसा होता है नहीं होता है ऐसा नहीं, तो ऐसे बहुत सी बातें हैं अगर अध्यात्म को, ये तो एक दृष्टांत दिया, ऐसी बहुत सी बातें हैं अध्यात्म की, हम सप्तम द्रव्य है तो आगम में जिनागम में तो छह द्रव्य है, और सरुदास जी ने क्या कहा तो सप्तम द्रव्य है, सप्तम द्रव्य बताया क्या, उसमें अध्यात्म है, छह द्रव्य से हमारी भिन्नता है वही वो बात उसमें है, तो ऐसे लेना है कि वहां ये पांच प्रकार के पर्याय है वो आगम पद्धति से है और ज्ञान सामान्य है वो अध्यात्म का विषय है, वो आगम का विषय नहीं है, तो उसी दृष्टि से उसको समझना है, ऐसा लेने की बात है।
Sarvam Nanyam 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 Nan